अरे हमको समय कहाँ है, मैं तो आज रास्ते से निकल आया इसलिए, नहीं तो हमको समय नहीं है यहाँ पर, मैं ब्राह्मण का लड़का, मैं ये सब काम नहीं करता, आज आपके कहने से वृद्ध है महिला इसलिए मैंने करा दिया। यदि वो काफी जो कृष्ण के अतिरिक्त और दूसरों की हम पूजा नहीं करेंगे तो कुछ लाभ होता। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, प्राज्ञ उसको कहते हैं अपने कार्य को उद्धार करना, मैं कह रहा हूँ ऐसे विद्यापति नहीं कह करके जाएगा वहाँ तो काम नहीं बनेगा, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ वहाँ पर ऐसा करके जाओ, नहीं तो रास्ता ही नहीं मिले, 15 लोग तुमको जाने नहीं देंगे, यहाँ पर वैसे ही जाना पड़ेगा। और अब यह अयोध्या के निकट बतलाया है, निकट समय रामचंद्र जी दंडकारण्य और ये सब चित्रकूट में कैसे गए, पैदल गए, जूता छाता लिया, इसलिए द्वारका से बैकुंठ से द्वारका दूर है किंतु अयोध्या से कुछ निकट है, उतनी दूर नहीं है, दूर वहां से भी बहुत दूर है किंतु दूर होने पर भी कुछ साम्यता है। वो कह रहे हैं तुम सुख से द्वारका यहां से पहुंच जाएगा क्योंकि तुम्हारे इष्ट देव में कुछ साम्य है, वो भी नरावतार हैं, नरलीला कर रहे हैं रामचंद्र, और कृष्ण भी दुभोज हैं और तुम्हारे इष्ट ये भी दो भी बिना जूता के भी राम सब जगह दंड कारण में चारों तरफ से हैं, बल्कि ये लिखा है जो लोग दुर्वा दल श्याम राम को दंडकारण्य में घूमते हुए कांटे से विद्ध होने पर निकाल देने के पर जो रक्त गिर रहा है, ऐसे रामचंद्र जी का जो ध्यान करेंगे भव सागर को पार होकर के अयोध्या में राम को चंद्र को सहज रूप में प्राप्त हो, क्यों इसलिए कहा रामचंद्र जी के पैरों में जब कांटा घुसेगा तो उसके दिल में दर्द होगा ना, दर्द किसको होगा, बिल्कुल प्रीति होती है नहीं? ऐसे हम लोग हैं और मान लिया कि कुछ कष्ट हो गया ना तो जिसको हमारे प्रति प्रीति है वो सब एकदम निकट में भाव आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा, बल्कि सुख का भाव याद नहीं रहेगा किंतु ये चीजें याद रहेंगी। रामचंद्र जी सीता जी के पैरों में कांटा गड़ गया, सीता जी उठ करके और झट बैठ गई और पैर को ऐसे दी और कांटा चुभ गया है बहुत, रामचंद्र जी झट बैठ गए और सीता जी का पैर को अपने हाथों में ले लिए और पैरों पर अपने जंघों पर गोदी ने उनका चरण ले लिया, आज तक कभी नहीं किया था ना? और उसको पकड़ करके खींचा उसको, औरत रक्त जब गिरने लगा तो अपना दुपट्टा फाड़ दिया और वहां रख करके करके फिर उसी के पास दिया। ये जीवन में सीता जी कभी भूलेंगी या उनका कोई भक्त मिलेगा नहीं, तो इसलिए कहते हैं कि उनके चरणों में जब रक्त गिर रहा यदि कांटा थी, आप ऐसे रामचंद्र जी का जो ध्यान कर रहे हैं बन बंसी रख रघुराई और उनका ये ऐसी स्थिति में कोई ध्यान करे तो घर बहुत सागर को पास करके उनको पास, ऐसे ही कृष्ण गोचारण में गए हूँ उनको कभी कांटा नहीं लगाना होगा और सखा लोग निकाली नहीं, और जब थक जाते होंगे और मिलन प्रियसियों के साथ नहीं हुआ होगा तो वो नहीं कहेंगी, वो तो कहती हैं कली लता मना काम सदी, वो श्लोक क्या है, चलत जत प्रजा चारयन पशुम नलिन सुंदरम नापते पदम फिलत लाल सिद्धि थी ना कली लता में मना
काम तगन
मन के साथ उनका विवाद होता है। मन कहता है अरे क्यों तुम उनके लिए रो रही हो, तो हमारे काम वन प्रदेश में गए होंगे गैया चराने के लिए और पत्थर के टुकड़े नोकीले उनके पैरों में नहीं लगते हैं कांटे लगते होंगे, इससे मन थोड़ा दुखी होता है। दुखी होने की क्या बात, सब जगह कांटे हैं और पत्थर के टुकड़े हैं, सब सीधे रास्ते नहीं हैं, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। तो गोपियां कहती हैं अरे भाई गायें तो सबक तो घूमती हैं कांटों की तो और ऊपर नीचे में जाती हैं, कांटे कुछ में अधिक जाती हैं, तो उनके पीछे पीछे जाने में उनको जरूर पड़ते। अरे मूर्खाओं अरे उनको भगवान ने मित्र नहीं दिए, देख करके नहीं चलते हैं उन्हें सीधे रास्ते से, कांटे कुछों में और उनमें जाने की क्या जरूरत है। अरे गैया जब दौड़ करके भागेगी तो उनको रोकने के लिए क्या वो देकर के जाएंगे, यहाँ काटा कुछ है उनके इधर उधर निकल जाएंगे, सबक ही तो काटा कुछ होंगे। पर इसी तरह से मन के हिसाब से उनका विवाद भरा कली लतान मना काम सगत से। ओ जब बन में जाते हैं कैसे गोपियां, तो यही कह रहे हैं दोनों की लीलाएं कुछ सम नव लीलावत हैं, इसलिए अयोध्या से कुछ निकट है बैकुंठ और अयोध्या निकट है कहां से बैकुंठ से। यहां पर कह रहे हैं जैसे रघुनाथ रूपस्य भगवतो अनुग्रह विशेषेण एव कि गोपाल देवो भगवान प्राप्यते। आप तो समझ रहे हो, देखो ये सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं इस देख रहे हैं इनके शब्दों को समझ श्री रघुनाथ रूपस्य रघुनाथ जी का रूप है उस रूप के जो भगवान हैं आता से जो रामचंद्र जी हैं अनुग्रह विशेष है नहीं वो अर्थात रामचंद्र जी के विशेष अनुग्रह से ही श्री गोपाल देव भगवान प्राप्त थे। भगवान जो तुम्हारे इष्ट देव जो गोपाल हैं वो सहज रूप में प्राप्त होंगे, जैसे शिवस्य अनुग्रह विशेष है नहीं वो यथा विष्णु स्थिति जिस प्रकार से शंकर जी की कृपा से विष्णु की प्राप्ति होती है उसी तरह से रघुनाथ जी की कृपा से ही द्वारका जी की प्राप्ति। क्यों ठीक बैकुंठ के नीचे शिवलोक, इसलिए शिव जी बतला करके कृपा करके उसको उपाय बतला देंगे, अभी यहाँ से चले जाओ वृंदावन में और उपासना करते तब फिर यहाँ ना, यहाँ से सीधा रास्ता वहां नहीं है, सीधा रास्ता वहां वृंदावन से है ना, ये शंकर जी बतलाए दूसरा नहीं बतला सकता। इसलिए शंकर जी की कृपा से जैसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है ऐसे ही रामचंद्र जी की कृपा से ही कैसे यदि कोई जानता है इस विषय को वह दंडका ऋषि के आश्रम के ऋषि लोग कितने 7000 ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे और करोड़ों वर्षों से कर रहे थे किंतु गोपाल मंत्र की सिद्धि नहीं हुई। जब रामचंद्र जी दंडकारण्य में आए उनको उनको देखा देख करके आकर्षित हो गए और कहा ये तो मालूम होता जो वही इतना सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, तो मन ही मन में उनसे प्रार्थना की प्रभु हम कृष्ण को कब मिली गोपी रूप से, तो रामचंद्र जी की कृपा हुई। उन्होंने कहा जैसे ठीक ये जो अगला आने वाला है ना द्वापर जी उसमें मैं खुद ही राम कृष्ण बनूंगा और उस समय तुम सब आकर के गोपी के घर में जन्म लेगी और हमको प्राप्त साध हो गया ना। दूसरी बात जनक की पुरखी जितनी राजकुमारियां थी राम के रूप में देकर के लुप्त हो गई और भी प्रिंसेस ऑफ जनकपुर जनकपुरी वे सो मच अट्रैक्टेड विथ इट रागात्मक भक्तों के अनुगमन में डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएगा, जरूरत नहीं है अयोध्या और बैकुंठ और शंकर रूप जाने की कहीं जरूरत नहीं है, यही वृंदावन से डायरेक्ट उस इसी वृंदावन में ही कृष्ण को पा करके और उनके साथ में फिर हो जाएगा। किंतु यहाँ पर क्रम मार्ग का विचार होगा, इसलिए कह रहे हैं कि रामचंद्र जी को जैसे माता पिता भाई बंधु सब परिवार हैं, ऐसे कृष्ण के भी परिवार हैं वहां द्वारकापुर में। जैसे उनको परिवार नहीं है नारायण का, उनका परिवार बस एक ही परिवार है, कोई पुत्र नहीं। नारायण का ससुर कौन है तो उनकी सास कौन है? कोई भी फादर ऑफ राम नारायण
बोलेंगे
नहीं, कोई उनका ससुर सास नहीं। उनका पिता कौन है? बेजन्मा है नारायण, बेजन्मा है, नो फादर नो मदर। उनका मित्र कौन है? कोई मित्र नहीं, सब दास है। किंतु अयोध्या में कुछ रामचंद्र जी के जैसे ये सब परिवार हैं, उनका भी परिवार है, किंतु कृष्ण का परिवार इनको दो पुत्र केवल है। और कृष्ण के कितने पुत्र हैं? एक एक पत्नियों के दस दस पुत्र और एक एक कन्या, या कितनी कन्या?
एक एक कन्या
तो 16,000 गुणा कर दीजिए तो कितना पुत्र? 16,000। बड़ा विराट परिवार है। उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए 3 कोटि मास्टरों की जरूरत पड़ती थी, इतना बड़ा भारी परिवार है। इसलिए अयोध्या से कुछ ये निकल सकता है, तभी अयोध्या से दूर है। तो कहते हैं कि बुद्धिमान कौन है? हम जो कहते हैं उसको पालन करो। अभी राम राम कह करके जाओ, जैसे वहां पर उदाहरण में हमने इसको स्पष्ट करने के लिए राधा जी की सूर्य पूजा और चंद्रावली की दुर्गा पूजा और गोपियों का पतियों से झूठ बोलना और सब जो है वो किस लिए? अपने इष्ट देव की प्राप्ति, वो कृष्ण की प्राप्ति है, इसलिए वहां पर कोई दोष नहीं है। और अपने सुख के लिए यदि हम करें तब तो बहुत बड़ा, अपने लिए मत करें, अपने सुख के लिए प्रसन्नता से, तब तो वो काम हो जाएगा, भक्ति विरोधी हो जाएगा, तब तो वो मूर्ख हो जाएगा। इसलिए मूर्खता मत कर, हम जो कहते हैं वही वही करो। एक बात और समझना, संकीर्तन तस्य तथोदितं प्रभु कुर्वन् गतस्तत्र निज प्रियेश्वरम् श्रीकृष्णचन्द्रं यदुवीवृतं किरं यदिच्छसति द्रक्षति संमन। और जब अयोध्या पार कर लेना तब तो फिर कृष्ण का संकीर्तन जैसा न हे गोपाल इत्यादि ये कर। अयोध्या तक जाते हुए तुम भीतर में अपनी निष्ठा ठीक रखना अपने इष्ट देव के, किंतु ऊपर से ये कर ले, उसमें कोई बुराई नहीं है। विशेष करके एक बात तुमको बतलाता हूँ, ये खूब अच्छी तरह से समझना, यही बात करके अपना वक्त शब्द समाप्त। एक बात ये, अपने गुरु जी के पास में एक रोज कुत्ता आकर के बैठता है, हटाने से भी नहीं हटता। और गुरु जी बड़े प्यार से प्रसाद पाने के बाद उसको रोटी का अपना जूठा टुकड़ा डाल देते हैं और वो पूछ खिलाता हुआ आकर के ले करके फिर वो। और गुरु जी के पास में किसी चोट चोट से बदमाश को नहीं आने देता ना? तो उनका जो अपना सेवक है उस कुत्ते को प्यार करेगा कि नहीं जो गुरु सेवक है? उसको बड़ा प्यार करेगा। Understanding? Very good, interesting thing. और गुरु जी की सेवा के लिए अपने प्राण को भी दे देने के लिए सब समय प्रस्तुत होता है, तो दूसरा सेवक उसको देकर के प्रसन्न होना चाहिए। यदि प्रसन्न नहीं होता है तो क्या समझो? कपटता है, द्वेष मिलता है। ऐसा आदमी बैकुंठ में कि आप कभी उसको भक्ति नहीं होता। इसलिए अपने इष्ट देव के प्रति यदि कोई थोड़ा सा भी आदर करता है उसको बहुत आदर करना चाहिए, यह भक्ति का लक्षण है। आ रहा है समझ में? यदि कोई व्यक्ति हमारे इष्ट देव का आदर करता है ने? तो गुरु जी कहते थे कि इसको जमाई समझो, जमाई बाबू जैसा आदर करो ने? तो अपने इष्ट देव की प्राप्ति, और यदि इष्ट देव की प्राप्ति में कोई बाधक है तो उसे कोई संबंध मत रखो ने? तो वही ये कह रहे हैं अपने इष्ट देव के प्रति अपने इष्ट देव की प्राप्ति हो रही हो और अपने इष्ट देव का कोई यदि आदर करता है तो क्या करो, उसका ऋणी बन जाओ। ये हमारे गुरु जी को इतना प्यार करता है, हमारे इष्ट देव का इतना प्यारा है ये, और हमारे कृष्ण के लिए इतना इसके हृदय में आदर है, तो उसका दासान दासान दास बन जाओ। यदि गुरु जी ये समझेंगे हो, हम जिसको प्यार करते हैं उसको ये प्यार करता है, और जिसे हमारा प्यार नहीं उसको प्यार नहीं करता, तो गुरु जी उस व्यक्ति को क्या करें, सबसे अधिक प्यार करें भगवान के विषय में ही ऐसा ही समझ। ठीक है, केवल एक थोड़ा सा ब्रज में कुछ उल्टी रीति दिखती है किंतु और कहीं नहीं, और वो उल्टी रीति केवल एक रस नहीं है, तीन रस चार रसों में नहीं है। यदि कोई कृष्ण को जसोदा जी के सामने प्यार करे तो जसोदा जी को ईर्ष्या होगी, कितना प्यार होगा। इफ एनी वन लव कृष्ण बिफोर श्रीमती जसोदा देन शी विल बी वेरी सो मच ग्लैड। जसोदा जी बड़ी हमारे बेटे को ये प्रसन्न प्यार करता है। नंद बाबा के सामने कोई कृष्ण का चुंबन ले ले तो नंद बाबा को द्वेष होगा कि नहीं, बड़ा आनंद होगा। कृष्ण के भक्तों को वैसे ही कृष्ण की कोई सेवा करता है तो उनका ऋणी बन जाता है। केवल मधुर रस एक है, उसमें कुछ विपरीत सा दिखता है। यदि राधा जी ने देख लिया ये कृष्ण को अधिक प्यार कर रही है चंद्रावली और कृष्ण, तो क्या कर रही है, उसके पास में मत जाने पाए, ये कुछ ऐसी व्यवस्था करो। किंतु वहां पर प्रेमी की पराकाष्ठा है, इसको समझना दूसरों के लिए बड़ा भारी है। इसलिए चंद्रावली को इतना प्राणों से भी अधिक आदर करती है, और वो चंद्रावली ही है राधिका जी, दूसरी कोई नहीं है। इस चीज को समझने के लिए विशेष बुद्धि चाहिए, इसलिए सीम का व्यतिक्रम यहां पर भी नहीं हुआ, इसलिए ये इनके लिए परामर्श दे रहे हैं। यदि तुम यहां देखो जिससे कि हमारे प्रभु इष्ट देव की प्रीति हो रही है, तो उसके प्रति तुम कृतज्ञ बनो। कैसे, राम के पास में जाओगे तो देखोगे वहां पर जामवान जी बैठे होंगे ना, जामवान तो फलू नहीं है जो मुख्यमंत्री थे, जामोहन थे, भल्लू थे ना, भल्लू थे, और उनके प्रधानमंत्री थे, और उनसे पूछ करके कोई काम करते थे। किंतु कृष्ण लीला में ये कौन है, कृष्ण के क्या है, कृष्ण के ससुर बन गए, इसलिए तुम्हारी सहायता करनी है। हनुमान रामचंद्र जी के सेवक हैं, और ये हनुमान कृष्ण के साथ में अर्जुन के रथ के ऊपर में बैठे हुए हैं, और वृंदावन में गोपीश्वर बन करके घूमता टहल करके यहाँ पर हैं। ये तुम्हारी, ये हनुमान भी तुम्हारी से तो सहायता कर सकते हैं, इन लोगों से तुम्हारी सहायता मिलेगी। इसलिए पहले तो जाओ तुम वहां और अपना काम निकाल करके फिर अयोध्या में जाओ, इसलिए अयोध्या जाना तुम्हारा अच्छा है। और इष्ट देव तुम्हारे इष्ट देव के प्रति इनकी जो निष्ठा है ये तुम्हारे लिए सहायक होगी, इसलिए इनके प्रति तुम ऋणी रहना, इनसे विरोध मत करना। अनजान इसलिए बड़ी बड़ी गुप्त रहस्य की बातें सनातन गोस्वामी भी प्रकट कर रहे हैं। ये सब टीकाओं में समझना भी बड़ा टेढ़ी चीज है। एक तो साधारण श्लोकों को समझना, जो श्लोक है उनको तो समझना ही नहीं है। आप टीकाएं जिसको सरल करके लिखे वो उसको भी समझना है। उन्होंने उदाहरण नहीं दिया है कोई, केवल लिख भर दिया है, उसको समझना बड़ा भारी। इसलिए इन चीजों को समझ बूझ करके ऐसे ही साधन करने पड़ो। फिर कल क्या होगा? फिर कल का बात आज मेरी भगवान साहब यदि कोई सिद्धांत नहीं समझेगा तो केवल कहानी हिस्सा हो जाएगा। बहुत इधर उधर क्या पीछा ठाकुर जी के तरफ सीख न हो या तो इधर न पता चला छे गर्म लग रही है
गर्मी गलती
तो बिना सिद्धांत के केवल कहानी खिस्सा हो जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत रामायण वेद उपनिषद शास्त्र सिद्धांतों के ऊपर में प्रतिष्ठित है। जो लोग केवल कहानी किस्सा जानते हैं राम का या कृष्ण का और सिद्धांत ज्ञान नहीं है उनके समझ में कुछ नहीं है, कल ऊपर ही में रह जाएंगे स्कूल विचार। अब जो लोग सिद्धांत में प्रवेश करेगा उसके निर्गुण भावों को वो लोग समझ करके साधन भजन करके कुछ उपलब्धि कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसलिए पहले ये सिद्धांत को बतला करके फिर पीछे से क्या हुआ ये बतला। महाभारत ऊपर से देखने से केवल कामसिक लोगों का युद्ध है, युद्ध मारा मारी चोरी बरजोरी यही सब, किंतु भीतर से प्रवेश करेंगे देखेंगे गीता जैसा रस्म शांति पर्व का भक्ति पर्व का ये सब बहुत सी अच्छी चीजें सिद्धांत आवरण के भेद से कपड़े के भेद से हो सकता है कि हम लोग जो कुछ पहनेंगे हैं कपड़े इनमें भेद, वैसे ही आवरण के भेद से उनमें कुछ अंतर हो सकता है, किंतु एक शाश्वत अजर अमर दिव्य आत्मवस्तु है उसमें एक। समस्त भागवत पुराण शास्त्र गीता भागवत पुराण जितने भी हैं भागवत वही एक ही चीज की बात है। भीतर में एक है और ऊपर से वो एक क्या कहते हैं ना ओल्ड इन न्यू बोटल इन न्यू बोटल हाँ वाइन इन न्यू बोटल वाइन तो वही है शराब तो वही है किंतु बोटल नया और डिजाइन का बना दिया है। उसी तरह से एक सब तो वही भगवत भक्ति यही एक पर्व तत्व है, कितनी पर्व तत्व है ये सब शास्त्रों का काम किंतु ऊपर से किसी को किसी रंग में किसी को किसी रंग में इस पूर्णता ये सब एक सफेद कपड़े का ब्रह्मचारी और सफेद कपड़े का परमहंस वेद और लाल कपड़े का ब्रह्मचारी और सन्यासी। कपड़े से तो भेद है वेद से भेद है किंतु उनके ऊपर अंदर में जो तत्व जो दो है तत्विक जो भी सभी हों भक्ति के अरसिक हों तत्व हों सब उनमें अंतर में क्या अंतर में एक ही वस्तु है। राय रामानंद सफेद कपड़े श्री कृष्ण स्वरूप, दामोदर सन्यासी वेश और लाल कपड़े, दोनों का भक्ति का विचार एक है। ऐसे ही सब शास्त्रों में ऊपर से तो देखता पकता है ये आवरण कुछ अलग अलग, भीतर में वस्तु एक है, उसको को किसी शब्दों में कहीं किसी शब्दों में कहीं लिखने का असल में ये समझना है, कहानी नहीं समझनी है। उसके समझ में यदि वो तत्व आ गया है तो वो अपने आप कहानी गढ़ लेगा, कहानी भी गढ़ लेगा। अब जहां कई शास्त्र में बातें हैं उसके उदाहरणों को वो ठीक ठीक रूप में अन्यथा समझे जाएंगे। कल जो बतलाया था हमने, जो उन्होंने कहा कि द्वारका दूर है और अयोध्या निकट है, इसका तात्पर्य बतलाया है। और मार्ग जाने का द्वारका किंतु एक ही मार्ग है, भक्ति की लता इस पृथ्वी लोक से निकलकर ब्रह्मांड को भेजकर, विद्या को भेजकर, सिद्ध लोक पाकर, सदाशिव लोक को भी पार कर गई, बैकुंठ अयोध्या गोलोक को भेज कर गई, गोलोक में द्वारका मथुरा को भी पार कर गई और अंत में ब्रजलोक, भक्ति एक ही रही है। किंतु उसके उसकी जो लता है कुछ पृथ्वी लोक में है, कुछ ब्रह्मांड में है, कुछ विद्या के ऊपर में है, कुछ वैकुंठ में भी है, और उसके ऊपर में गोलोक वृंदावन में जाकर के फलना फूलना और बढ़ना था मोतिया, उसमें प्रेम फल लगा, फल कहीं नहीं लगा, फल वहीं लगा, किंतु लता एक ही है। ऐसे ये अयोध्या से होकर के ये लता जा रही है और उसी को अवलंबन करके हमारे ये भोग कुमार जी चल रहे सफल। अयोध्या की निकटता, द्वारकापुरी की दूरी और एक चीज विशेष बदला है, एकांतिकता की हानि कैसे और कब होती है। उद्देश्य यदि ठीक हो, उद्देश्य हम ठीक रखते हैं और किसी की पूजा ऊपरी रूप से कर देते हैं, प्रतिष्ठा दे देते हैं, एकांतिकता की हानि नहीं होती। किंतु तत्वतः चीज को नहीं समझते हैं और फिर उनको जो आदर देते हैं उसमें एकांतिकता नष्ट हो जाती है। यदि शंकर को भगवान का दास समझा जाए और समझ करके इनके द्वारा भगवान की प्रीति मिल सकती है हमको, तो यहाँ पर इनकी पूजा करना वो एकांतिकता की हानि नहीं है ना? किंतु यदि हम शंकर जी को समझेंगे तो ये स्वयं ईश्वर है और इनकी आराधना सबसे श्रेष्ठ है और कृष्ण भी भगवान है, वो भी उनकी पूजा भी सर्वश्रेष्ठ है, तब फिर दोनों की पूजा जो करेंगे उसमें एकांतिकता की हानि है। आ रहा है समझ में? यदि किसी कारण से हमको पता मिल जाए कि भाई गणेश की सेवा करने से भी राधा जी की कृपा मिल सकती है, नहीं करेंगे हम, अभी नहीं करेंगे, संदेह की बात हमारे अंदर संदेह है। यदि एक तृण की सेवा करने से और तृण प्रसन्न होकर के हमको राधा जी का दास्य दे दे तो हमको तृण ही की पूजा कर रहे, हमको राधा जी का मिलना अभिष्ट है, किसी की पूजा अभिष्ट नहीं है, हमको उनकी कृपा चाहिए राधा जी। यदि पुलिंदियों की पूजा करने से, पुलिंदी जानते हैं, पुलिंदियों की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से राधा जी की कृपा हो जाए तो पुलिंदी की हम 100 बार आराधना करेंगे, सुरेंद्र माने गोवर्धन की नदी है, ये सब गोविंद लीलामृत की बातें हैं। अर्थात हमको इस चीज की जरूरत है, ये चीज देखना हमारा अभीष्ट कैसे होगा। यदि एक नौकर की भी सेवा करने से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छा तो भाई तुम तो मिला तो दो, तुम जो कहोगे वो तुमको खुश कर देंगे। हमको मिलने की जरूरत है, इसलिए कह रहे हैं कि तुम यदि सीतापति कह देगा तो तुम्हारा काफी वक्त था मनुष्य, तुम यदि रघुनाथ जय श्री राम की जय ये यदि कीर्तन करेगा तो तुम्हारा वो एक निष्ठता है अनन्यता नष्ट नहीं होगी। क्यों, तुम किस लिए कर रहे हो? तुम्हारे इष्ट देव मदन गोपाल के लिए सीधा रास्ता वहां से मिल जाएगा, वो रास्ता छोड़ देंगे, हमें तो वो बंदर नहीं जाने देंगे उधर,